أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دعاء میں اسم اعظم، اور اسم اعظم صرف اللہ ہے یا الحی القیوم ہے، یا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، یا بہت سے حضرات نے الرب کو بھی اسم اعظم قرار دیا. اسی لیے انبیاء، اولیاء، دشمنان خدا ربنا سے اپنی دعائی لگا رہے ہیں، اور کیوں نہ لگائیں کہ خود قرآن میں اللہ عز و جل نے رب هذا البيت جیسا کہ سورت میں فرمایا. اور ابھی تو ماشاء اللہ سنا ہے کہ کل تیرے در پہ ہجوم عاشقاں ہوگا. حضرت شیخ قدسی روح ذی‌الحجہ کا چاند طلوع ہوا، اعلان ہو گیا کہ فلاں دن بقرعید، تو اس کے بعد سے حضرت شیخ قدسی روح کو کھانا پینا اچھا نہیں لگتا تھا، اور جیسے جیسے دن قریب آتے تو اور مزید تقلیل ہو جاتی، اور عرفے کا دن ہوتا پھر تو روزہ ہی ہوتا تھا، عرفے کے دن کا روزہ جب حضرت ہندوستان میں ہوتے تھے. یا ایسا بھی ہوا کہ حضرت مدینہ پاک میں ہوتے تھے، صحت بھی ٹھیک ہے، جا بھی سکتے ہیں، لیکن حضرت نے ایک دفعہ حج کا سفر نہیں فرمایا، اور حج کے دنوں میں حضرت مدینہ طیبہ میں مقیم رہے، اور اپنے متعلقین کو تحریر فرمایا کہ ان دنوں میں مدینہ طیبہ میں قیام میں بڑا ہی لطف آیا. کیوں؟ کہ اکثر اہل مدینہ اور مدینہ منورہ کے مقیمین، اقامہ والے عمال، اکثریت ان کی حج کے لیے سفر پر ہوتی. تو اس وقت امام صاحب کے لیے ترکی حرم والے حصے میں جہاں مصلی امام صاحب کا ہوتا تھا، تو اس کو تبدیل کر کے ریاض الجنہ میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر امام صاحب آ جاتے، اور شرکائے نماز اور مصلیوں کی تعداد اتنی کم رہتی تھی کہ ریاض الجنہ میں امام صاحب ہیں اور پیچھے مصلی ہیں، اور ترکی مسجد والا حصہ پورا ہو کر کے مشکل سے صحن تک صف جاتی تھی. گویا چند سو حضرات حج کے تین چار دن کے درمیان تمام نمازوں میں اتنی ہی کم تعداد رہتی تھی. تو حضرت شیخ قدس روح ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید قرب حاصل کرنے کے لیے کہ بس آپ ہوں اور ہم ہوں، تو اس کا لطف لینے کے لیے حج کو بھی قربان فرما دیتے تھے. یہی وہ تعلیم تھی کہ جس کا اثر ہم ہمارے ساتھی حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا حبیب اللہ صاحب مد ظلہم العالی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 30 برس سے نہ وہ حج کے لیے تشریف لے گئے، نہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، نہ کسی اور کام کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر ینبو، جدہ، کہیں باہر نکلے. اللہ تعالیٰ ایسی محبت مدینہ پاک سے ہمیں بھی اس کا کوئی شمع عطا فرما دے. تو یہ حضرت شیخ قدس روح سے انہوں نے یہ سبق پڑھا اور اس پر عمل کیا. اللہ کرے کہ جو اسباق ہم نے پڑھے تو مجھ جیسے گمراہ کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اسباق کو جو بھول بھلیاں کر دیے دوبارہ یاد کرنے کی مجھے توفیق دے. तो अभी ये तो मुबारक अय्याम है, तो माशा अल्लाह कितनी बड़ी तादाद में दुनिया भर से उम्र वालों का वहाँ हुजूम है कि उमरतुन फी रमज़ान कहिज्जती माई, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान का उम्रा मेरे साथ हज करने के बराबर है। तो उसकी फजीलत हासिल करने के लिए सारी दुनिया वहाँ पहुँची हुई है। अल्लाह ताला उनके उम्रों को कबूल फरमाए, उनके हज को कबूल फरमाए, और कैसी बाबरकत जगह के जिसको ख़ुद कुरान करीम ने बरकत वाली जगह फरमाया। और यहाँ सूरह लैला फ़ी कुरैश में रब हादल बैत, तो इसी तरह फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इन्ना अव्वल बैती वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकं वहुदल लिलआलमीन फ़ीह आयातुम बय्यिनात। कितनी बाबरकत जगह जिसको मालिक ने ख़ुद बाबरकत फरमाया हो। इसीलिए हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न सफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह मक्का होकर मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए और मक्का मुकर्रमा फतह हो गया, तो फरमाते हैं कि मेरा घर काबतुल्लाह से थोड़े फासले पर था और रस्ते पर था, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने खुद्दाम और लश्कर समेत मक्का मुकर्रमा में दाखिल होकर मक्का मुकर्रमा के रास्तों और गलियों से गुज़रता हुआ मैं देख रहा हूँ। तो मेरे जी में आया कि मैं भी अब पीछे पीछे हो जाता हूँ, जाकर देखूँ कि सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं। फलांदुरन्ना कैफ यस्नउ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं कि मैं तैयार होकर निकल पड़ा। तो जब मैं पहुंचा तो उससे पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ में दाखिल होकर नफलें पढ़ चुके थे और वहां से बाहर निकल रहे थे। फ़रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद खरज मिन अल काबा हुवा व असहाबु وقد استلموا البيت من الباب الى الحطيم। तो मैं देख रहा हूँ कि आका मुल्तज़म पर हैं, आपके दाएं बाएं चारों तरफ सहाबे किराम गुलदस्ते की तरह काबतुल्लाह से चिमटे हुए हैं। وقد استلموا البيت من الباب الى الحطيم قد وضعوا خدودهم على البيت, अपने गाल कभी दायां गाल कभी बायां गाल, कद वदाउ खुदूदहुम अलल बैत व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्तहुम। क्या मंजर होगा, क्या मंजर होगा, हज़रत शेख कुदसिरू का गोरा गोरा जिस्म और हज़रत की ऊपर वाली तहराम की चादर मलमल की होती थी, जिसमें से गोरा गोरा चमड़ी का कलर गर्दन का पीठ का साफ नज़र आता था। उसमें एक अजीब व गरीब हुस्न जमाल उस वक्त नज़र आता था। तो सहाबी अब्दुर्रहमान इब्ने सफ़वान रदी अल्लाह ताला अन्हु कितना लुत्फ उठा रहे हैं बयान फरमाते हुए इसको कि फ़रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद खरज मिन अल काबा हुवा व असहाबुहु وقد استلموا البيت من الباب الى الحطيم قد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم। कैसा गुलदस्ता, कितना प्यारा। उसी जगह पर हजरत शेख कुदसिरू तो मक्का मुकर्रमा में रमजान मुबारक के क़याम में असर की नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते और असर की नमाज से लेकर तरावी के ख़त्म तक वही तशरीफ़ फरमा रहते। और वो जगह थी रुकन यमानी और हतीम के दरमियान वाला जो हिस्सा है उसके सामने बिल्कुल बीच की मुहाजात पर तुर्की हरम में हज़रत के लिए हम मुसल्ला बिछा दिया करते थे। कभी हजरत की नज़र बेतुल्लाह की तरफ टिक टिकी है, कभी गर्दन नीची है, आंसू जारी हैं, कभी अपने पारे की समाअत में मसरूफ़ हैं, पारा सुना रहे हैं। तो मगरिब तक हजरत उसी जगह तशरीफ़ फरमा रहते, बल्कि तरावी के बाद तक भी वहीं पर इफ्तार होता। तो हम लोग हजरत को बिठा करके बारी बारी तवाफ़ के लिए चले जाते थे और कोशिश करते थे कि मगरिब की अज़ान तवाफ़ ही की हालत में हम सुने। तो अहले मक्का के बड़े बड़े हजरात, उनकी कोशिश होती कि अपने यहाँ काम करने वालों और अपने खुद्दाम और बेटों और पोतों के बजाय वो खुद बजाते खुद अज़ान से दो चार मिनट पहले तश्त में खजूरें लेकर खड़े हो जाते हैं, बल्कि तवाफ़ करने वालों के साथ साथ चलते रहते और उनको पेश करते जाते। तो इसी दौरान एक मरतबा मैं तवाफ़ से फारिग हुआ, चंद लम्हे अजान में बाकी हैं। मैं जब मुल्तज़म पर पहुंचा तो मैंने देखा कि हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियाँ साहब नदवी नव्वर अल्लाहु मरकदहु व अला अल्लाहु मरातिबहु व बर्रद अल्लाहु मज़जअहु, वो मुल्तज़म पर चिमटे हुए हैं और दो दुआ के कलिमात कदरे आवाज़ के साथ अदा हो रहे हैं। अल्लाहुम्म नक्किस आलामहुम वहज़िम जुंदहुम, मुसलसल दुआ बार बार हो रही है। इस वक्त भी जो उम्रे वाले वहाँ पहुँचे हुए हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनके उम्रे कबूल फरमाए, उनकी दुआएं कबूल फरमाए। तो ये हमारे सामने हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने सफ़ान रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कितना प्यारा नक्शा खींचा कि जब मैं तैयार होकर बैतुल्ला पहुँचा तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के दरवाज़े से बाहर निकल रहे हैं और सहाबे किराम भी साथ हैं, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम हजर अस्वद से लेकर हतीम तक मैंने देखा कि सब ने अपने गाल बैतुल्लाह पर रख दिए। इसी दुखुल काबा के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली रिवायत में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन इंदिहा। तो ये किस्सा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी जिसमें साथ हैं, ये हज्जतुल विदा का किस्सा है कि जिसमें फरमाती हैं कि मेरे पास से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से निकले हैं, वह हुवा करीरुल आइन ثم رجع وهو كئيب, हर वक्त तकती रहती थी कि आंखें अभी कैसी हैं, रंग कैसा है, मिजाज कैसा है, पेशानी के खतूत कैसे हैं। यह है मोहब्बत। इसी तरह देखकर सवाल के भी बहुत सारे किस्से हैं। एक तो जिसमें उन्होंने शेर पढ़ा, तो इसी तरह यहाँ सवाल किया, मैंने जब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से निकले तो मसरूर और शादमा थे, लेकिन जब वापस तशरीफ़ लाए तो मैं महसूस कर रही थी कि चेहरे अनवर पर परेशानी के आसार हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि मैं काबे में बैतुल्लाह में दाखिल होकर आया, अब मुझे इसका खौफ है कि कहीं मेरी उम्मत पर ये मेरा फ़ैल और मेरा काबे में दाखला मशक्क़त का सबब न बन जाए कि सारा हज का इज़्तिहाम और सारी जमीयत और तमाम शुरका हर एक की ख्वाहिश होगी कि वो भी बैतुल्लाह में दाखिल हों, और सैकड़ों हज़ारों में ये मुमकिन नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था मेरे बाद ये तादाद बढ़कर लाखों नहीं मिलियनों में हो जाएगी, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम فرماتے ہیں کہ مجھے اب اس کا خطرہ ہے کہ کہیں اس کو حج سے متعلق نہ سمجھا جائے، حالانکہ یہ حج سے الگ چیز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں تشریف لائے تھے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے۔ اگرچہ علامہ سہیلی اور ابن حمام کی رائے یہ ہے کہ دو دفعہ داخل ہونے کی جو روایات ہیں وہ دونوں کی دونوں حجۃ الوداع ہی کی ہیں، کہ دخلها یوم النحر ولم یصلی فیہ ودخلها من الغد وصلى فیہ، کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اس میں نماز نہیں پڑھی، اور دوسری مرتبہ داخل ہوئے اور بیت اللہ میں نماز پڑھی۔ تو حضرت شیخ قدس الروح بھی طواف سے فارغ ہو کر ملتزم سے چمٹ جاتے تھے، دیر تک روتے رہتے، پھر اسی کسی سفر میں جب صدر ضیاء مرحوم زمبابوے، جو اس زمانے میں روڈیشیا تھا، وہاں کی کسی کانفرنس سے واپس مکہ مکرمہ پہنچے، حضرت شیخ قدس روح کی ویل چیئر کو دیکھا، علماء صلحاء کا مجمع دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون بزرگ، بتایا گیا کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب ہیں، تو انہوں نے آدمی بھیجا۔ تو حضرت جب طواف کی نفلوں سے فارغ ہوئے تو حضرت کو ان کے خادم کی درخواست پہنچائی گئی کہ جنرل ضیاء ملنا چاہتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ یہیں پر جب ہم اپنے بقیہ طواف سے فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ حضرت قدس الروح ویل چیئر میں کبھی 5 طواف، 7 طواف، 10 طواف تک بھی کبھی ہو جاتے تھے، اس لیے فرمایا کہ جب طواف سے ہم فارغ ہوں تو اس وقت یہیں پر صحن میں تشریف لے آئے، ملاقات ہو جائے گی۔ چنانچہ جنرل ضیاء انتظار میں رہے، دیکھا کہ اب حضرت فارغ ہو چکے ہیں تو حاضر خدمت ہوئے، سلام مصافحہ کے بعد دعا کی درخواست کی، حضرت نے دعا فرمائی، پھر درخواست کی کچھ نصیحت فرمائیے، تو حضرت نے ایک ہی نصیحت فرمائی، کسی پر ظلم نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس نصیحت پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر ایک اپنی جان پر اپنے آپ کا محاسبہ کریں، تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم دعائے صدیقی کے مصداق ہم ہی ہیں، ہمارے ہی لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی تھی، کہ جو ہم نماز میں جو دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، تو انی ظلمت نفسی یہ ہمارے ہی لیے ہے کہ ہم دوسروں پر مظالم کا کیا ٹھکانہ ہوگا جب اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، اور انواع و اقسام کے ظلم اپنی جان پر۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اس اپنی جان پر ظلم سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری نفس پروری خود ہی اپنی جان پر ظلم ہے، تعیش یہ خود اپنی جان پر ظلم ہے، اور پھر آگے متعدی ہوتا ہے یہ تو ظلم، کہ اس تعیش کی عادت ہم ورثے میں دے رہے ہیں اپنے آل اولاد کو، فیملی کو، بچوں کو، تو جب لاڈ پیار کے نام سے جو ہم ان پر ظلم کر رہے ہیں تو پھر اور مظالم کا کیا حال ہوگا جس پر لاڈ اور پیار کا پردہ بھی نہیں ہے، حجاب بھی نہیں ہے، یہ تو خود اپنی جان پر ہمارا ظلم، یہ تو ہماری اولاد اور گھر والوں پر ظلم، تو پھر پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے نفوس کب تیار ہوں گے کہ اس کی گاڑی 5 منٹ کے لیے آپ کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی تو اسے تکلیف نہ سمجھے، یہ نفس کیسے مانے گا جو اتنا ظالم हमने उसे बना दिया, कितना तुआना तंदुरुस्त बना दिया, सारी उम्र उसको खिलाने पिलाने में हमने सर्फ कर दी। तो ये इतना ताकतवर नफ्स बन गया जुल्म के सिलसिले में कि फिर आगे अपनी जान का तो क्या सवाल, औलाद का तो क्या सवाल, पड़ोसी के हुकूक़ भी भूल जाएगा, रिश्तेदारों के हुकूक़ भी भूल जाएगा, हर जगह बस वही अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी। इसलिए बहुत ही सोचने और समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हमारी इन आदात सैया से हमारी हिफाजत फरमाए। लेकिन ये जब होगा कि हम इसे समझें कि हम जालिम हैं, अपनी जान पर जुल्म कर रहे हैं, क्या क्या छोड़ करके, छोड़ना तो क्या कि हम करते ही क्या है कि सब कुछ हमने छोड़ रखा है, न हमारी नमाज नमाज है, न हमारा जिक्र जिक्र है। तो अपना ये जब ये हाल, तो दूसरों के बारे में क्या कुछ हमारा नफ्स हमें करने पर आमदा नहीं करेगा। और यहाँ पर इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ादा और तहियात की जो दुआएं तालीम फरमाई, इसमें बाज़े सहाबे किराम को ये दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी तालीम फरमाई, और किसी को अल्लाहुम्मा इन्ना नऊद बिक मिन अज़ाब जहन्नम व नऊद बिक मिन अज़ाब अल-क़ब्र व नऊद बिक मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व नऊद बिक मिन फितनतिल महया वल ममात। कितनी बड़ी ये तमाम आफात हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम फरमा रहे हैं कि हर नमाज का इसे जुज बना लो और मांगो। ये फितन और महन और दज्जाल और जहन्नम, तो यहाँ मुझे वो मसला फिर वापस याद आया जो तअव्वुज़ में हाथों को पलट कर दुआ की जाती है, तो उस वक्त कैफियत दिल की भी खौफ की, डर की इस कदर हो कि जिस तरह अभी ये जहन्नम मेरे सामने है और मैं उसे डरने के लिए हाथ के ज़रिए बच रहा हूँ, लेकिन चूंकि नमाज है इसलिए दोनों हाथ जानों पर उल्टे ही रख कर दुआ की जाती है, सिर्फ एक उंगली से इशारा किया जाता है दुआ के वक्त, कि जैसे ही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह से उंगली उठी हुई है तो अब ये सलाम पर नीचे रखी जाएगी, क्योंकि जैसा हज़रत हकीम उल उम्मा हज़रत थानवी क़ुद्दस सिर्रहू ने हज़रत गंगोई नवरल्लाहु मरकदहू से पूछा कि हज़रत ये तशहुद में आपकी अंगुश्ते शहादत उठी हुई रहती है सलाम तक, इसकी क्या दलील? तो हज़रत गंगोई क़ुद्दस सिर्रहू ने इरशाद फरमाया कि ये तिर्मिज़ी किताब दावात में ये रिवायत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगुश्ते शहादत सलाम तक उठी हुई रहती थी। चुनाचे इसी कौल को हज़रत थानवी क़ुद्दस सिर्रहू ने अपनी तिर्मिज़ी की शरह में भी, जो सबसे आखिरी सफ़े पर जो सबक है, जो शरह ख़त्म होती है, वहाँ इसी रिवायत को और इसी कौल को वो लाए हैं कि उंगली सलाम तक अंगुश्ते शहादत को उठाए रखे। तो ये जो नमाज में हाथ हमारे जानों पर हमने उल्टे रखे हुए हैं, तो ये इसीलिए कि हम इन फितन से और दज्जाली फितने से और जहन्नम के अजाब से डर कर हाथ इस तरह किए हुए हैं। तो उस वक्त ये दिल में डर की कैफियत भी होनी चाहिए कि गोया कि इसी वक्त जहन्नम हमारे सामने है, इसी वक्त दज्जाल का फितना हमारे सामने है, और ये अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, तो इसमें जो इसके नतीजे में, इस जुल्म के नतीजे में जो गुनाहों का पहाड़ हमारा बन गया है और उससे जो आग ढकती हुई तैयार हो चुकी है उससे डरने का तसव्वुर किया जाए। जब पढ़ें अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कथीरा व इन्नहु ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली, तो इसीलिए हम गोया कि उस आग से बचने के लिए हमारे दोनों हाथ जानू पर हैं कि नीचे से वो आग चेहरे तक न पहुंच जाए, उसको रोकने के लिए हमारे हाथ जानू पर हमने रखे हुए हैं। अल्लाह ताला हमारी नमाजों में हमें खुशू अता फरमाए, हमारी तिलावत में खुशू अता फरमाए, अज़कार में हमें खुशू दे, अल्लाह अल्लाह की ज़रबें हों उसमें खुशू अता फरमाए, और नफ्स और शैतान के वसाविस से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। ये एतिकाफ़ का मौसम चल रहा है, हज़रत शेख क़ुद्दस रूह के साथ शुरू दिसंबर 1969 में 89 हिजरी के रमज़ान मुबारक में मस्जिद नबवी में हज़रत शेख क़ुद्दस रूह अपने रुफ़क़ा के साथ मुअत्तकिफ़ हुए थे। जैसा मैंने बारहा अर्ज़ किया कि हज़रत शेख क़ुद्दस रूह की ज़ाते पाक के साथ मालिक अज़्ज़ा व जल का इम्तियाज़ी अंदाज था कि उस वक्त जब हमने हज़रत को देखा तो एक हज़रत पर भी अजीब जज्बाती किस्म की कैफियत तारी थी, क्योंकि 3-4 दहाइयों से हज़रत वहाँ माह मुबारक के अय्याम गुजार नहीं सके थे। 3-4 दहाइयों के नागे के बाद ये पहला रमज़ान था, इसलिए जब ईद से पहले हज़रत शेख क़ुद्दस रूह हिंदुस्तान वगैरह को खुतूत इरसाल फरमाते तो उसमें किसी न किसी अंदाज से अलईद इंद अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तज़किरा होता। बाब उमर और बाबु सलाम के बिल्कुल बीच एक दरवाज़ा था जिसके करीब हज़रत शेख क़ुद्दस रूह के लिए और सारे खुद्दाम के लिए रस्सियां बांध कर पर्दे लटका कर के एतिकाफ़ मौतकफ़ बनाए गए थे, और वो जगह इसलिए मुंतखब की गई थी कि दरवाज़ा लबे सड़क था और सड़क छोटी सी होती थी जिसमें गाड़ी या ट्रक गुज़र सकता था, और सड़क के ख़त्म होते ही चढ़ाई शुरू होती थी और एक दो मंजिल से ज़ायद बुलंद वो पहाड़ था जिस पर हज़रत सूफ़ी इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह का दौलत कदा था। तो हम इस्तिंजा गुस्ल वग़ैरह के लिए भी हज़रत सूफ़ी जी के घर जाया करते थे। तो इस तरह हज़रत शेख क़ुद्दस रूह की तरह से तमाम सलासिल के औलिया किराम का यहाँ मस्जिद नबवी में वुरूद और हाज़िरी और एतिकाफ़ की दास्तानें निराले अंदाज में सबकी मिलती हैं। खुद आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ सालों के एतिकाफ़ की मुख्तलिफ़ दास्तानें हैं। उसी जगह पर बार बार हज़रत शेख क़ुद्दस रूह ने एतिकाफ़ फरमाया। हमारे हकीम अब्दुल क़ुद्दूस साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने मुखलिस साथी और दोस्त हज़रत मौलाना हकीम खलीलुर रहमान साहब के साथ, जो न मालूम कितने बरसों से उन्होंने एक जगह अपने लिए मुख्तस कर रखी थी, वो ये थी कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक की सीध में हद्दुल मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सुतूनों पर लिखा हुआ है تو وہاں آخری مصلی ان دونوں بزرگوں کا ہوتا تھا جب وہ معتکف ہوتے تھے. مسجد نبوی کے معتکفین کو بھی اور مسجد حرام کے معتکفین کو بھی اللہ تعالیٰ شانہ قبول فرمائے, ان کی عبادتوں اور دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو موجودہ مصائب کے بھنور سے نکال کر اطمینان اور سکون اور راحت کی زندگی میسر فرمائے. جیسا میں نے عرض کیا کہ حرمین شریفین کی تاریخ میں اعتکاف کے بھی مختلف ادوار ملتے ہیں. حضرت امام الحرم المکی و رئیس ریاست الحرمین شیخ محمد بن عبداللہ السبیل کی ریاست سے پہلے معتکفین کے لیے کافی دشواریاں تھیں. معتکفین کیا بہت سی چیزوں میں ان کے زمانے میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں نظر آئیں, ان میں سے ایک یہ اعتکاف بھی ہے کہ ان کے دور ریاست میں مسجد نبوی میں یہ دیکھا گیا, جس طرح دنیا بھر کی تمام مساجد میں معتکفین جہاں چاہیں اعتکاف کر سکتے ہیں اور ان کے لیے ہر قسم کی سہولیات میسر تھی, کیونکہ وہ اپنے اطراف کے لوگوں سے معلوم فرماتے رہتے تھے کہ انتظامی سلسلے میں کوئی مشورہ آپ دینا ہو تو دے سکتے ہیں. چنانچہ بارہا ریاست الحرمین کے سیکرٹری مالیات شیخ محمد المنصوری نے خود مجھ سے بھی کئی چیزوں کے بارے میں پوچھا, تو اسی طرح اور حضرات سے بھی وہ پوچھتے رہتے تھے, اور بڑی ضروری اور مفید اصلاحات ان کے دور ریاست میں ہوئی. اگرچہ انتظامیہ کے سامنے وقتی مسائل بھی ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ترمیم ضروری ہوتی ہے. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.